एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जाने विश्वास हम करते हैं, एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं, एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं, एक ऐसे राज की बात। कसामी यदि तुझको आज पुकारे, धरती आकाश कसामी यदि तुझको आज पुकारे, उसके हाथों में देना सब चिंताएं दुख सारे, महिमा में जीवन देगा, बस कर विश्वास हम करते हैं, एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं, एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं, ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं, एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। ये हमारे महान स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे पवित्र आत्मा से आशीष दे और तेरा वचन सुनकर वे बहुत आज से आशीष पाने सके। मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे पिता परमेश्वर, कि मैं तेरा वचन को तेरे इच्छा के अनुसार तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारे श्रोता गणों, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है विश्वासियों का समुदाय। क्रोध में बुजुर्ग व्यक्ति उस लाठी को जो उसने ले रखी थी पत्थर पर मारता है, उसे पीछे खींचते हुए वह फिर से घुमाता है और बोलता है, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? पानी का एक धारा चट्टान से निकलती है जो इज़राइल की आवश्यकता को पूरा करती है, लेकिन पानी के उपहार के लिए चट्टान को श्रेय देने के बजाय खुद को श्रेय लेने में मूसा ने पाप किया था और उस पाप के कारण वह प्रतिज्ञा किए देश में प्रवेश नहीं कर पाया। यह हम पाते हैं गिनती की पुस्तक में उसका 20 अध्याय का 7 से 12 पदों में। वह चट्टान मसीह था, वह न्यू जिस पर परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्थापित किया। यह छवि पूरे पवित्र शास्त्र में पाई जाती है। आखिरी धर्मोपदेश में मूसा ने इसराइल को जो उपदेश दिया था, शायद इस घटना को याद करते हुए उसने चट्टान की छवि का इस्तेमाल परमेश्वर की स्थिरता और निर्भरता को चित्रित करने के लिए किया था। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। व्यवस्था विवरण 32 का 3 और 4। सदियों बाद दाऊद ने उसी विषय को प्रतिध्वनित किया, उसका उद्धारकर्ता चट्टान के रूप में। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। यह हम पढ़ते हैं भजन संहिता 62 का 7 में। यशायाह ने आने वाले मसीहा के लिए इसी छवि का इस्तेमाल किया। एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ न्यू के योग्य पत्थर, यशायाह 28 का 16। पत्रस ने गवाही दी कि मसीह ने इस भविष्यवाणी को एक सामान्य पत्थर के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित पत्थर के रूप में पूरा किया, जिसे वास्तव में मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। पहला पत्रस 2 का 4। पौलुस ने यह कहते हुए उसकी पहचान एकमात्र निश्चित न्यू के रूप में की, उस न्यू को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा न्यू डाल नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों 3 का 11। उस चट्टान का उल्लेख करते हुए जिसे मूसा ने मारा था, उसने कहा, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। पहला कुरिन्थियों 10 का 4। यीशु मसीह ने स्वयं सीधे छवि का उपयोग किया जब उसने घोषणा की, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, मत्ती 16 का 18। उसने स्वयं पर जीवित चट्टान पर मसीही कलीसिया की स्थापना की। संसार के पापों के लिए उसका अपना शरीर बलिदान होना था। चट्टान पर प्रहार, एक ठोस न्यू जो वह प्रदान करता है, पर बनी कलीसिया के खिलाफ कुछ भी प्रबल नहीं हो सकता। इस चट्टान से चंगाई का पानी प्यासे राष्ट्रों के लिए बहेगा। एजिकेल 47 का 1 से 12 में हम पाते हैं। यहूना 7 का 37 और 38 को भी हम पढ़ सकते हैं, और प्रकाशित वाक्य 22 का 1 से 5 को भी हम देख सकते हैं। जब मसीह ने यह घोषणा की तो कलीसिया कितनी दुर्बल और कमजोर थी। इसमें कुछ थके हुए संकालु आत्म प्रचारक शिष्य, मुट्ठी भर महिलाएं और चंचल भीड़ शामिल था जो चट्टान पर प्रहार होने पर गायब हो गई थी। फिर भी कलीसिया का निर्माण कमजोर मानवीय ज्ञान और कौशल पर नहीं बल्कि युगों की चट्टान पर किया गया था। समय प्रकट करेगा कि कुछ भी उसकी कलीसिया को नष्ट नहीं कर सकता है या इसे परमेश्वर की महिमा करने के अपने विशेष कार्य से और पुरुषों और महिलाओं को उद्धारकर्ता की ओर ले जाने से रोक सकता है। प्रेरितों के काम 4 का 12, 13 और 20 से 33 में हम इस बात को पढ़ते हैं। शास्त्रों में कलीसिया शब्द यूनानी एक्लेसिया का अनुवाद है, जिसका अर्थ है एक बुलाहट। आमतौर पर लोगों को मिलने के लिए बुलाने की प्रथा द्वारा बुलाई गई किसी भी सभा के लिए इस अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। सेप्टुआजिंट इब्रानी पुराने नियम का यूनानी संस्करण जो यीशु के समय में लोकप्रिय था ने इब्रानी कहल का अनुवाद करने के लिए एक्लेसिया का इस्तेमाल किया जो इकट्ठा होना सभा या मंडली को दर्शाता था। व्यवस्था विवरण 9:10-18:16, 1 Samuel 17:47, 1 Raja 8:14 और 1 Itihas 13:2। इस प्रयोग का नए नियम में विस्तार किया गया था। ध्यान दें कि यह कलीसिया शब्द का उपयोग कैसे करता है। पहला, विश्वासी एक विशिष्ट स्थान पर आराधना के लिए इकट्ठे हुए, 1 Corinthians 11:18, 14:19-28। दूसरा, एक निश्चित इलाके में रहने वाले विश्वासी, 1 Corinthians 16:1, Galatians 1:2, 1 Thessalonians 2:14। तीसरा, एक व्यक्ति के घर में विश्वासियों का एक समूह, 1 Corinthians 16:19, 4:15, 2 Philemon 2। चौथा, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में मंडलियों का एक समूह, प्रेरितों के काम 9:31। पांचवा, दुनिया भर में विश्वासियों की पूरी संस्था, मती 16:18, 1 Corinthians 10:32, 12:28 और Ephesians 4:11-16। और छठवा, स्वर्ग और पृथ्वी पर संपूर्ण ईमानदार सृष्टि, Ephesians 1:20-22। और हम इसका तुलना कर सकते हैं Philippians 2:9-11 से। बाइबल कलीसिया को एक दिव्य संस्था के रूप में चित्रित करती है। इसे परमेश्वर की कलीसिया प्रेरितों के काम 20:28, 1 Corinthians 1:2 कहती है। यीशु ने कलीसिया को दिव्य अधिकार से लैस किया है, Matthew 18:17-18। हम मसीही कलीसिया के स्वरूप को पुराने नियम की जड़ों से और नए नियम के विभिन्न रूपकों को देखकर समझ सकते हैं जिसका उपयोग नए नियम में किया जाता है। मसीही कलीसिया की जड़ें, पुराना नियम कलीसिया को परमेश्वर के लोगों की एक संगठित मंडली के रूप में चित्रित करता है। आदम, सेत, नूह, सेम और इब्राहिम के वंश में परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार आदिकाल से ही उसकी सच्चाई के संरक्षक थे। ये घराने जिनमें पिता याजक के रूप में कार्य करते थे को लघु रूप में कलीसिया माना जा सकता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने स्मृद प्रतिज्ञाएं दी जिसके द्वारा परमेश्वर का यह घराना धीरे धीरे एक राष्ट्र बन गया। इज़राइल का विशेष कार्य इब्राहिम को दी गई प्रतिज्ञाओं का मात्र एक विस्तार था। सभी राष्ट्रों के लिए एक आशीष बनना, Utpatti 12:1-3 में हम यह पाते हैं। संसार को परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करना, जिस राष्ट्र को परमेश्वर मिस्र से बाहर लाया था उसे जंगल में कलीसिया या मंडली कहा गया था, प्रेरितों के काम 7:38। इसके सदस्यों को याजकों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र, Nirgaman 19:5, परमेश्वर के पवित्र लोग, Vyavastha 28:9, और तुलना करें Leviathan 26:12 से, उसकी कलीसिया माना जाता था। परमेश्वर ने उन्हें दुनिया के प्रमुख सभ्यताओं के केंद्र फिलिस्तीन में रखा। 3 महान महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका फिलिस्तीन में मिलते हैं। यहाँ यहूदियों को अन्य राष्ट्रों के लिए दास बनना था ताकि दूसरों को परमेश्वर के लोगों के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा सके। संक्षेप में, परमेश्वर ने उन्हें राष्ट्रों को अंदर बुलाने के लिए बाहर बुलाया, Isaiah 56:7। वह इज़राइल के माध्यम से पृथ्वी पर सबसे बड़ी कलीसिया की सृष्टि करना चाहता था, एक कलीसिया जहां दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि आराधना करने आएंगे। सच्चे परमेश्वर के बारे में जानेंगे और उद्धार के संदेश के साथ अपने लोगों के पास लौटेंगे। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का निरंतर देखभाल के बावजूद इज़राइल मूर्ति पूजा, अलगाववाद, राष्ट्रवाद, अभिमान और आत्म केंद्रितता में शामिल हो गया। परमेश्वर के लोग अपने विशेष कार्य को पूरा करने में विफल रहे। यीशु में इज़राइल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया। परमेश्वर के लोग अपने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए एक मसीहा के इंतजार में थे, लेकिन उन्हें स्वयं से मुक्त करने के लिए एक मसीहा नहीं। क्रूस पर इज़राइल का आत्मिक दिवालियापन स्पष्ट हो गया। मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर उन्होंने बाहरी रूप से भीतर की सड़न को प्रदर्शित किया। जब वे चिल्लाए, कैसर को छोड़कर हमारा और कोई राजा नहीं, यूहन्ना 19:15, तो वे परमेश्वर को अपने ऊपर शासन करने की अनुमति देने से इनकार कर रहे थे। क्रूस पर दो विपरीत विशेष कार्य एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। पहला, कलीसिया का अस्त व्यस्त होना। अपने आप पर इतनी केंद्रित थी कि यह उसी के लिए अंधी हो गई थी जिसने उसे उसका अस्तित्व दिया था। दूसरा, मसीह का, जो लोगों के लिए प्रेम पर इतना केंद्रित था कि वह उनके स्थान पर नष्ट हो गया ताकि उन्हें शाश्वत अस्तित्व प्रदान किया जा सके। जबकि क्रूस ने इज़राइल के विशेष कार्य के अंत का संकेत दिया, मसीह के पुनरुत्थान ने मसीही कलीसिया और उसके कार्य का उद्घाटन किया। मसीह के लहू के द्वारा उद्धार के सुसमाचार की घोषणा। जब यहूदियों ने अपना विशेष कार्य खो दिया तो वे सिर्फ एक अन्य राष्ट्र की तरह बन गए और परमेश्वर की कलीसिया नहीं रहे। उनके स्थान पर परमेश्वर ने एक नए राष्ट्र, एक कलीसिया की स्थापना की जो दुनिया के लिए उसके विशेष कार्य को आगे बढ़ाएगी। मत्ती 21:41-43। नए नियम की कलीसिया प्राचीन इज़राइल के विश्वास समुदाय से निकटता से संबंधित है, जो परिवर्तित यहूदियों और अन्य जातियों दोनों से बनी है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इस प्रकार सच्चे इज़राइल वे सब हैं जो विश्वास से मसीह को स्वीकार करते हैं। गलातियों 3:26-29। पौलुस इन विविध लोगों के नए जैविक संबंधों को दो पेड़ों की कल्पना के द्वारा दर्शाता है, एक अच्छा और एक जंगली जैतून का पेड़। इज़राइल और अन्य जातियां क्रम के अनुसार एक के बाद एक। यहूदी जो मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं वे अब परमेश्वर की संतान नहीं हैं। रोमियो 9:6-8। और अच्छे वृक्ष से अलग की गई शाखाओं से उनका तुलना की जाती है। जबकि वे यहूदी जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया वे जुड़ी हुई शाखाएं हैं। पौलुस अन्य जातियों को जो मसीह को स्वीकार करते हैं जंगली जैतून के पेड़ की शाखाएं जो अच्छे पेड़ में साटी जाती हैं के रूप में चित्रित करता है। इसे हम पाते हैं रोमियो 11:17-25 में। वह इन नए अन्य जाति मसीहों को परमेश्वर के चुने हुए साधन के रूप में दिव्य विरासत का सम्मान करने का निर्देश देता है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं, और यदि एक डाली तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। रोमियो 11:16-18 में हम पाते हैं। नए नियम की कलीसिया अपने पुराने नियम के समकक्ष से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। प्रेरितिक कलीसिया इसराइल राष्ट्र से अलग एक स्वतंत्र संगठन बन गई। कलीसिया को एक सार्वभौमिक चरित्र देते हुए राष्ट्रीय सीमाओं को त्याग दिया गया। गलातियों 3:27-29 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। एक राष्ट्रीय कलीसिया के बजाय यह एक धर्म प्रचारक कलीसिया बन गई जो परमेश्वर की मूल योजना को पूरा करने के लिए विद्यमान थी, जिसे इसके संस्थापक यीशु मसीह के दिव्य आदेश को बताने के लिए पुनः स्थापित किया गया था। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, यह हम पढ़ते हैं मत्ती 28:19 में। यह यीशु का आदेश है, आइए हम यह काम करें। परमेश्वर के वचनों से आपको बहुतायत से आशीष मिले, आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, तूने सबको बुलाया है, हम लोग को चुनता है कि हम तेरे संस्था में आए, तेरे संगठन में रहे और तेरा आशीष पाए। हमें सच्चा कलीसिया में बुला पिता, और वहाँ हमें स्थापित कर कि हम तुझ में बने रहे और तेरे धार्मिक और पवित्र रास्ता में चले। हम सबों को बहुत आय से आशीष दे।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।